कृष्ण क्या भूत और कपटी हैं, या तो नंद बाबा से कपटता कर रहे हैं, न वसुदेव देव से कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि बड़े प्रेम के साथ में वसुदेव देव से कर रहे हैं, असमर्थ होने के कारण पिताजी मैं आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सका, अब आया। इसको सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए वे लोग, सारे दुख जो ये कहना चाहते थे उनकी इच्छा थी ये पूछे, अरे आप तो स्वयं भगवान हैं, आपको शंख चक्र गदा पद्म लेते हुए आपको दर्शन किया कब? कारागार में, हमारे गर्भ में रहे आप 8 महीने, पिताजी के गर्भ में पहले थे और पिताजी ने फिर उनको मंत्र के द्वारा देवकी के गर्भ में दिया, तो ये 8 महीने उनके गर्भ में थे स्वयं भगवान, और इसके बाद में जन्म के समय में उनको दर्शन दिए और लालन पालन किया, चुंबन किया किसने? देवी ने, और अपना स्तन भी दिया, ये तो थे नहीं किंतु तो भी स्तन तो दिया ही। इतना बार जिस भगवान के नाम से ही भवबंधन दूर हो जाता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। वसुदेव और देवकी पूछना चाहते थे, हमने कौन सा पाप किया जो आपको इतना दिन गर्भ में धारण किया, आपको दर्शन किया, आपसे बातचीत हुई, आपकी स्तुति हमने की, गोदी में लेकर के हम बैठे, स्तन भी दिया, और फिर भी हमारा इतना पाप का कि कंस के कारागार में हम लोग आपत्थर है, और इतने दिनों तक हमारे हृदय पर वो पत्थर रखा, गाली गलौज दिया, अपमान किया, कितना दिन? 11 वर्ष। हम लोगों का कौन सा ऐसा पाप था जो हमारा पाबंधन नहीं कटा? किंतु कृष्ण ने यही रोते हुए और हे पिताजी हे भैया, मैं असमर्थता वशतः आपकी सेवा नहीं कर सका, आप लोग हमें क्षमा करें, बस इतना कहते हैं। सब दुख माता पिता के लिए इससे और कोई बड़ी चीज नहीं, बुद्धे सब दुख सुख सकते। तो ये कह रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने क्यों कहा? अतएव जरासंध इत्यादि दुष्टों को दमन करके, नाना कार्यों की अपेक्षा न करके, कंस वध के दूसरे दिन ही क्यों नहीं ब्रज में लौटे, जैसे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं चला जाऊंगा, यदि ये वसुदेव देवी को सांत्वना देने के लिए। जरासंध का वध उसके बहुत वर्षों के बाद हुआ, अंततः तो 18 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 18 बार तो उसने आक्रमण किया, और इसके बाद में वो द्वारका चले गए, थक गए पीछे, और इसके बाद में महाभारत युद्ध से पहले भीम अर्जुन को शिष्य यज्ञ के समय में अश्वमेध यज्ञ में से जाकर के, करीब करीब तो हम समझते हैं कि 50 वर्ष बाद में, 50 वर्ष में प्रतीक्षा करते रहे, इसके बाद में फिर ब्रज में गए, दंत पत्र के वध के समय में। यह तो प्रेम की, ये प्रेम की पहचान नहीं है, इसीलिए गोपी गणों के प्रकृत प्रेम की अपेक्षा और यदि गोपियों के प्रेम के प्रति कृष्ण यदि ध्यान देते नंद बाबा और दूसरों के प्रति, तब तो इन सब कामों को उपेक्षा करके नंद से वध के पश्चात ही, कंस वध के पश्चात ही तुरंत परसों उनको लौट जाना चाहिए। यहां पर कुछ लोग इसका सामंजस्य नहीं करना, इन 3-4 जो श्लोक जो बोला गया है एक तरफा विचार करते हैं, इसलिए वो सिद्धांत सिद्धांत के अनुरूप नहीं, प्रेम के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, एक पक्षीय हो जाता है। जो मथुरा में ही कृष्ण बलदेव रहे और 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद में मथुरा ब्रज में नहीं लौटे, इसलिए सामंजस्य के अभाव में अपसिद्धांत ही रह जाता है, अपसिद्धांत है जो कृष्ण पद में जरूर उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहते हैं तो वो प्रेम की हानि हो जाती है। ऐसा कृष्ण नहीं सह सकते, भागवत नहीं सह सकते, सुखदेव गोस्वामी नहीं सकते, कोई भी भावुक और रसिक व्यक्ति भी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अतएव जब उपपत्ति का निर्णय करने पर, उपपत्ति माने क्या, ज्योमेट्री में या किसी भी चीज के प्रसंग को प्रमाणित करने के लिए पहले उसका छह उपपत्ति के निर्णय के कारण है। दर्शन की दृष्टि से क्या क्या, पहले हम क्या चाहते हैं, हम उनको ये श्लोक भी याद नहीं है, वर्ड भी याद नहीं। जैसे ये दो त्रिभुज बराबर हैं, इनका बीच का कोण और सामने की भुजा बराबर है, तो ये हर प्रकार से बराबर है। अब लेट ए बी सी एंड दिस टू ट्रायंगल मान लो, तो ये एक मानना हुआ। यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या होगा, हाइपोथेसिस के द्वारा ये चीजें दी गई हैं, किंतु यदि ये दी गई है तो इसलिए ऐसा ही होगा, उसको हमको छह विचार होते हैं निर्णय के। याद है उपाक्रम उपसंहार, और अंत में उपपत्ति और उपसंहार, उपक्रम उपसंहार, ये छह उपपत्ति क्या, उपक्रम उपसंहार संशय और उसका क्या कहते हैं, उसका भी नाम है पहले ये सब याद है, पहले अब तो हमने छोड़ दिया, तुम लोगों को ये सब कुछ पढ़ना चाहिए, ये दार्शनिक विचार है। जीव गोस्वामी ने इस सब विचारों को दिया, यदि भक्ति चाहिए तो ये सबको विचार कर, नहीं तो ये केवल कथा से ही नहीं होगा, दार्शनिक भी होनी चाहिए। कथा में रंग दिया, हाँ अपूर्वता फलम, उपत्ति उपसंहार अपूर्वता फलम, और दो रह गया ये तो ये सबको भाई याद रखो, जब ये समझना चाहते हो। आई कैनॉट एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स सो दे विल एक्सप्लेन, बट इट इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इफ एनी वन इज नॉट क्वालिफाइड एंड नॉट रियलाइज, वेरी हार्ड। एंड आई थिंक दैट यू लेडीज you cannot go through so deep darshan philosophy, you should cook and give to Krishna or that sort. इसलिए यदि कृष्ण प्रेमी हैं और ब्रजवासियों का प्रेम यदि उच्च कोटि है, तो जरासंध के वध तक करीब करीब 50 वर्ष कृष्ण नहीं सह सकते, जरूर उनको दूसरे दिन जाना है कि इस बात को ठीक करना है, कैसे गए और नहीं करना है, इसी को वैष्णव लोग सामंजस्य कर सकते हैं, और यदि सामंजस्य नहीं करते तो ऐसा अर्थ करने से अब सिद्धांत हो जाएगा, और हम लोग प्राय इसी अर्थों को ही लेते हैं, गंभीर भाव से जाते नहीं। यदि भागवत का अर्थ समझना है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गंभीर विचार, इफ यू वांट टू टेस्ट श्रीमद् भागवतम then you'll have to go and you'll have to follow the explanation of deep meaning of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, otherwise you cannot realize all these things. इसलिए उपपत्ति इत्यादि उपसंहार उपक्रम उपसंहार अपूर्वता फलम इत्यादि को विचार करके अब इस विषय को हम बतला रहे हैं। क्या क्या दिखला दिखलाया हमको, देरी हो गई, 7 बजे। वसुदेव आदि प्रेमिक हैं, वसुदेव देवकी अप्रू और यहां का रहने वाले जो जदुवंशी लोग हैं, जादव लोग हैं, जरूर प्रेमी, यहां तक कि पांडवों से भी अधिक प्रेमी हैं, यह बात ठीक है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, कृष्ण उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। नंद इत्यादि की तरह भांति जो प्रेमी लोग हैं, ब्रजवासी लोग हैं, गोपियां हैं, पृथ्वी में इनका उदाहरण कोई नहीं है। अपना उदाहरण प्रेम के विषय में यही है, ऐसा देखा नहीं जाता है और सुना भी नहीं जाता है कि नंद बाबा यशोदा और गोपियों की भांति विशेष करके अष्ट सखियों और राधिका जी के जैसे, चंद्रावली के जैसे देखा सुता ने नहीं देखा था। इसलिए ये इन लोगों की कृष्ण कैसे उपेक्षा कर सकते हैं, या संपूर्ण रूप से अपसिद्धांत हो जाएगा प्रेम के संबंध, कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। और देवदेव की तो बात क्या, प्रहलाद महाराज के विभक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते। कोई भी एक साधारण जो है, हम लोग जो अभी जो कुछ घर छोड़ करके आए हैं, जो नास्तिक नहीं है, कुछ लोगों का विचार है, कोई है जो हम लोगों ने यहाँ पर 25 वर्ष जीवन बेकार था, व्यक्ति बेकार, कुछ लाभ नहीं, अरे दुर्भाग्य, इसे दुर्भाग्य जीवन में कोई नहीं हो सकता। देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कहते हैं कि हमको कोई लाभ नहीं हुआ, क्यों, फर्क का नहीं सुनते, क्यों, पैसा कुछ ले आने से, कुछ सेवा करने से सुकृति तो होगी, किंतु भीतर में ये रहेगी कि हमको कुछ लाभ हुआ नहीं, हमको दोहन कर रहे हैं, अहंकार द्वारा भिक्षा मंगा करके बड़े आराम से रह रहे हैं और हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो ऐसा दुर्भागा जीवन में वैष्णव के साथ में रह करके भी ऐसा दुर्भागा अपराधी जीव जगत में नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं चाहते, चाहते हैं इस प्रेम में डूबे। मैं समझता कि इतना खोल करके, इतना गंभीर प्रेम का विषय कहीं भी नहीं विचारित विश्व में होना बड़ा कठिन है, कहीं नहीं विचारित होगा इनके विचार में। हम लोग इसको भी समझाने की चेष्टा, ऐसा मैंने सुधा प्रेम देना चाहते हैं, तभी ऐसा है बुद्धि दुर्बुद्धि कि समझते कि हमारा जीवन बर्बाद, अपराधी। ऐसे लोगों को मठ में रहना नहीं ही अच्छा है। जिसको थोड़ी सी श्रद्धा हो उसकी तो श्रद्धा बढ़कर के ऊपर जाएगी, किंतु ऐसे विचार वालों की भक्ति कभी भी नहीं हो सकती, उनका जीवन सचमुच में व्यर्थ है, अपराधी संचय। इसलिए उनकी उपेक्षा संपूर्ण अविधेय, कृष्ण उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रेम को कोई भी रसिक विद्वान होगा, भावुक होगा, वो भी उपेक्षा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं उपेक्षा कर सकता। इधर में वसुदेव देवी की देवकी की उपेक्षा नहीं होगी, किसी प्रेमी भक्त की नहीं होगी, नंद यशोदा और गोपियों की उपेक्षा की तो बात ही क्या है, उनको तो बहुत ऊपर रखो, जरा सुंदर इत्यादि जो दुष्ट है उनका दमन और शिष्ट गणों का जो पालन करना है या अवतार उचित कर्म है, यह भी कृष्ण के लिए जरूर करना है। क्या कहा,
तो
तुम्हारे समझ में तुम्हारा कितनी नहीं है,
ये लास्ट
कर्म ये जरासंध इत्यादि कर्म, जरासंध दंत वक्र और जितने भी दुष्ट लोग हैं इनका वध करके शिष्टों का पालन करना, ये अवचार होगा अवतार का ये काम है, ये तो कृष्ण को जरूर करने चाहिए। इसके लिए यदि मथुरा द्वारका से आकर के दुष्टों का संहार करके शिष्टों का पालन करके धर्म की जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो ठीक है, ये उनको करना चाहिए, ये भी बात है। रुक्मिणी इत्यादि के साथ में उनका विवाह करना भी आवश्यक है। 16108 पारिजात का हरण, धर्म और युधिष्ठिर के साथ में महाभारत की लीलाएं और विचित्र बातें सब जो है लीलाएं हैं, द्वारका की लीलाएं भी कृष्ण को अवश्य करनी चाहिए, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, ये कोई अपसिद्धांत की बात नहीं, ये भी कृष्ण को करना चाहिए। हनुमान जी का दर्शन करके और फिर गोपियों के समीप ब्रज में प्रत्यागमन की प्रतिज्ञा को भी सत्य करना उनको उचित है, ये भी उनको उचित है। आ रहा समझ में? ये भी उचित है, ये सब जैसे काम उचित है, इसलिए इनको ये भी उचित है जो प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा को रखना भी उनका कर्तव्य है। या इसलिए यहाँ पर कुछ मीमांसा करना होगा, ये ब्रज में नहीं गए ऐसा कभी हो नहीं सकता, कृष्ण के ब्रज में जरूर जाना होगा, अपनी प्रतिज्ञा भी रखनी होगी, उनके प्रेम की पूर्ति भी करनी होगी। जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मा को मोहित करने के लिए कृष्ण जी स्वयं बछड़े और बालक इत्यादि बने, कितने करोड़ों करोड़ों बालक और बछड़े बन गए, उनकी लठिया बन गए, कमलिया बन गए, स्वभाव बन गए, सब कुछ वो बन गए, कोटि कोटि ये बन गए धन का कृष्ण, और अपनी निखिल लीला संपादन कारिणी अतर्क ऐश्वर्य स्वरूपिणी अघटन घटन पटीयसी जोग माया के द्वारा आश्रय करके बलदेव के साथ में कृष्ण जब नंद के समीप गमन उन्होंने किया, घर में आ रहे हैं ना बछड़ों के साथ में, गायों के साथ में, वो बछड़े गायें लपुटी कंबलिया कौन थी, आ रहे हैं ना, लाभ धारण कर लिया। यदि ऐसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं कृष्ण ऐसा कर सकते हैं? क्या बलदेव के साथ में पहले नंद बाबा के साथ में ब्रज में जाएं और वहां पर नंद इत्यादि स्वरूप और अपने स्वरूप को परिकरों के भी स्वरूप, नंद इत्यादि का भी स्वरूप और कृष्ण बलदेव का भी, दो दो स्वरूप करके एक स्वरूप में ब्रज में जाएं और दूसरे स्वरूप में मथुरा, मेरे स्थित में हक क्या है, हमारा सिद्धांत भी ठीक हो जाता है, प्रेम की परिपाटी भी की रक्षा हो जाती है, नई बदलावों को नहीं समझ में आया। यदि कृष्ण ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए, अपनी लीलाओं को ठीक रखने के लिए लाखों उदाहरण करके बछड़े बन सकते हैं, लठिया बन सकते हैं, वो सब कुछ बन सकते हैं, तो यहां पर कृष्ण जब ऐसे अघटन घटन जो उपाय शक्ति उनकी है उसको दर के लिए दो भाग में विभक्त होकर के बलदेव बाबा, बलदेव और कृष्ण दो हो जाए, नंद बाबा भी दो हो जाए, हाँ नंद बाबा का स्वरूप भी दो हो जाए, एक स्वरूप से कृष्ण को लेकर के ब्रज में चले जाए बलदेव और कृष्ण, और दूसरे स्वरूप से बलदेव और कृष्ण नंद बाबा को भेज करके और वहां पर दोनों काम हो जाए, दो स्वरूप को उनको मान लो, इतना सहज नहीं है जितना समझ लोगे, कुछ दिन गुरु सेवा करो और ये समझो जब हम गुरु जी को कृतार्थ करने के लिए यहां आए हैं तब तो हो गया, लाख जन्मों में नहीं समझ सकते इन भाव, इसलिए गुरु के समीप आदमी किस लिए आते हैं, शिष्य किस लिए, उनकी सेवा करके इन भावनाओं को हम ग्रहण करेंगे भजन के द्वारा, उनकी सेवा के, इसलिए जो ऐसे हैं वो तो बढ़ जाएंगे और अपनी बुद्धि से जो चलते हैं वो क्या होंगे, रह जाएंगे। अभी इतना बतला रहे तभी नहीं समझ में आएगा बहुतों को, दो चार हम समझते हैं, दो एक चार आदमी ऐसे होंगे जो समझते, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स इन वेरी इजी वे, आई एम थिंकिंग दैट इट इज वेरी इजी एंड ऑल कैन अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई विल आस्क एंड आई विल परीक्षा लूंगा, एग्जाम इन दैट आई विल सी द नन कैन दिस भक्ति फिलोसफी इज सो डीप दैट इफ एनीवन सर्विंग गुरुदेव एंड गुरुदेव ऑल्सो बी क्वालिफाइड एंड सर्विंग हिम देन एनीवन कैन अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ऑल दिस प्रेम फिलोसफी अदरवाइज नॉट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जबकि कोटि कोटि रूप धारण कर सकते हैं तो क्यों नहीं ऐसा कर सकते, एक स्वरूप से वो ब्रज में चले जाएं, बलदेव नंद और बलदेव और कृष्ण एक स्वरूप से प्रकट में चले जाए, ब्रजवासियों को वहां पर संतना दें, उनके साथ में क्रीड़ा विनोद करें, और दूसरे स्वरूप से नंद बाबा को अकेले भेज दें और वसुदेव सुति के साथ में रह जाए। इसके लिए अब फिर कह रहे हैं, देखो ऐसा क्यों नहीं हो सकता,
ब्रज का निर्माण करना पड़ेगा ना, नंद बाबा लौटेंगे
और तुम्हारी बुद्धि अभी ऐसी एक ही साथ में सब कुछ दिन बहुत सेवा करना पड़ेगा गुरु वैष्णव, बहुत सेवा, अनकंडीशनल सरेंडर, अपना स्वार्थ कष्ट सब कुछ भूल कर तन में हो करके विषम भय न गुरु सेवा। अब ये समझ में आए, ऐसे नहीं, हम सब कुछ जान गए, हम कुछ जानना नहीं है, आप गुरु के पास रहने की क्या जरूरत। और कृष्ण ने जैसे बलदेव जी ने 64 कलाएं सीख करके गुरु जी को दक्षिणा दे करके लौट गए, हम भी वैसा ही कर लेंगे भैया, ये सब विषय बहुत। अर्थात देखो नारद जी गए हैं ना ब्रज में, वहां पर द्वारका में क्या किया, एक साथ देखा कहीं विवाह हो रहा है, कहीं बच्चों के साथ काम के साथ में लाल पालन कर रहे हैं, और कहीं पर देख रहे हैं कि जैसे कृष्ण कहीं बाहर गए हैं और सब लोग गृह में तड़प रहे हैं, और कभी बच्चों का लालन कर रहे हैं, 60 घर में अनेक रूप से देखा, एक ही कृष्ण, यदि एक ही कृष्ण ऐसा कर सकते हैं विभिन्न रूपों में, तो यहाँ पर दो भाग में उनको भी भक्त होने में क्या कठिनाई हो सकती है, और ये सिद्धांत भी ठीक हो जाएगा। अब कह रहे हैं क्यों नहीं संभव पर होगा, अर्थात उन्होंने पूछा पिताजी से, किससे, नंद बाबा से। अब इस प्रश्न को फिर से नए रूप में बतलाऊंगा कि वहां पर कृष्ण नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज बेटे को बहुत परिश्रम हुआ, खाया भी नहीं सवेरे से, और कंस चारों माह को मारने में बहुत कष्ट हुआ है, आज अभी भूखा भी होगा, ये घर ले जा रहे हैं तो खिलाने दो खिलाने दो, अब हम भी वहां पर चले शांति के साथ में, अब तो कोई असुरों से उत्पात की अब संभावना नहीं, डर की बाती वो तो निकल गई, कंस ये पापी मारा गया अपने पापों के कर्मों से, अब मैं भी चल करके आनिक पूजा कर लू शाम को, और फिर और वे भी विश्राम करें, और फिर सवेरे अब हम भी सवेरे कल कथाओं को सुनाएंगे। आई थिंक दैट कैन यू एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग टू देम, कैन यू एक्सप्लेन ऑल थिंग बेटर दैट यू कैन हियर ऑल फ्रॉम माधवदास माधव गौ प्रभानंदे।
इसे खटक खटक क्या
लकड़ी का काम, आसन बन आसन बन रहा है, बिंदी का काम व्यास आसन,
व्यासासन का तो खटर खटर का काम तो हो गया, स्टील कार्विंग
इलेक्ट्रिकल
तो ये प्रवचन के समय में होगा, तब तो कितने लोग सुनने के लिए आते हैं,
बंद हो गया।
विषय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर, ऐसे विषयों का अनुशीलन उसके सेहत को और बिगाड़ देगा, और भी उसे ले डूबेगा, तो हम लोगों का भी ऐसा ही है। तो कृष्ण ने उनको माता पिता के संबोधन से उनके सारे दुखों को हटा, और फिर उनसे बड़े प्रेम से बोले, उनको समझाने लगे, उनसे तरह तरह की बातों में उनको उनके गोदी में बैठ गए और रोने लग गई उनकी मैया, और पिताजी भी आंखों से आंसू से। ये संसार है, जो भगवान का भजन करता है वो क्यों दुखी है? एक एनिमल ईशा में कृष्ण इवन चैंटिंग रिमेम्बरिंग डूइंग ऑल दी सर्विसेज ऑफरिंग एवरीथिंग टू कृष्ण बट इवन इट सीम्स दैट दे आर नॉट है एंड दी पर्सन्स हु आर डूइंग अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स नॉट चैंटिंग रिमेम्बरिंग डूइंग एनीथिंग बट दे सीम्स दैट दे आर हैप्पी but really they are not happy never usi samay mein ki baat hai idhar to ye hua unka bandhan khola aur ugrasen ka bhi bandhan khola aur khulne ke baad mein ugrasen rajya tilak ka sari samagri apne saath mein le aaye the brahman ko bhi lekar ke aaye the कृष्ण का राज्याभिषेक कर दिया। कृष्ण ने कहा जी मुझे राज्याभिषेक की मेरी जरूरत नहीं, हमारे वंश में राज्य नहीं, राज्य किस लिए? जजातित उस वंश में जदु महाराज के पिता, उन्होंने अभी संपात किया गया तुम्हारे कुल में कोई भी राजा नहीं हो सकेगा। क्यों? जजाति जी उनको शुक्राचार्य की बेटी का विवाह हुआ था और कुछ ऐसी ही गड़बड़िया थी जिस प्रकार से उनको कुछ श्राप लगा था जजाति को, शुक्राचार्य ने दे दिया तुम हमारी बेटी को धोखा देकर के दूसरी स्त्री से को तुमने रख लिया है और उसके भी बच्चे हो रहे हैं, हमारी बेटी को भी हो रहे हैं, हमारी बेटी बड़ी अप्रसन्न है, इसलिए जाओ तुम बूढ़ा हो जाओ। युवावस्था में वो बूढ़ा हो गया, अपने बेटों से कहा कि तुम अपना जौवन दे दो, हम अभी कुछ दिन संसार को भोग करके पीछे तुमको लौटा। जदु सबसे बड़े पुत्र थे, जदु से उसका युवावस्था मांगा तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जन्म भगवान का भजन करने के लिए है, हम इसको नहीं देंगे। दूसरा पुत्रों से पूछा तो दूसरों ने दे दिया और 10,000 वर्ष तक संसार का भोग करने पर भी उसकी संसार की स्पृहा नहीं गई। कामों के उपभोग से काम दूर नहीं हो सकता, जैसे आग, आग में घी देने से आग बढ़ती जाती है वो कमेगी नहीं, उसी प्रकार से भोगों से भोगों को दूर नहीं किया जा सकता और भी बढ़ती जाती है भोग की लिप्सा। अंत में 10,000 वर्ष के बाद में उनको कुछ ज्ञान हुआ तो उस समय में उन्होंने अभी संपात किया था जदु को जो तुम्हारे कुल का कोई भी तुम्हारे वंश में कोई भी राजा नहीं होगा, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जैसे उनके हिसाब से हमारे वंश में कोई राजा नहीं होगा और हम न राज्य लेना चाहते, इसलिए गुरुसेन आपको हम दे रहे हैं, आप भोज वंश के राजा हैं, यद्यपि भोज वंश भी जदु वंश के अंतर्गत है तो भी तुम लोगों के लिए कोई बात नहीं है, तुम्हारे वंश में राजा होते आए हैं इसलिए हम राजा नहीं होना चाहते हैं, उनको भी राज्य दिया। इसके बाद में दूसरे दिन नंद बाबा बैठे थे, कहां वो बैठे थे? जमुना के किनारे जहां पर उनका गाड़ा वो रखा था और वहीं पर कृष्ण के लिए बलदेव के लिए प्रतीक्षा कर रहे। उन्होंने सोचा ये अभी कंस को कृष्ण ने मारा, बच्चा है थक गया है, भूख भी लग गई है, इसलिए जदवंशी लोग कृष्ण को लो और बलदेव जी को ले जा रहे हैं, अभी थका हुआ है, खिलाएंगे पिलाएंगे आदर करेंगे और मुझे भी समय मिल जाएगा, मैं अभी इन लोगों की बच्चा अभी भूखा है, रात में सोएगा सोए और हम अभी जाएंगे अपने वासस्थान पर, तो वहां पर हम विश्राम करेंगे और संध्या अनिक भी कर लेंगे, पूजा पाठ अपना कर लेंगे, फिर दूसरे दिन वो प्रतीक्षा करते रहे शाम तक। सवेरे दूसरे दिन भी शाम को कृष्ण उनके निकट आए और बोलते देखा जी नंद बाबा बड़े दुखी कुछ चिंता कर रहे हैं। कृष्ण बलदेव उनके दाहिने और बाएं गोदी में बैठ गए। नंद बाबा जी रोते हुए उनसे पूछने लगे क्या तुम लोग ऐसा समझते हो कि हम वसुदेव के पुत्र हैं और वो लोग तुमको रखना चाहते हैं, तुम लोग यहाँ पर रहना चाहते हो, या तुम सचमुच में हमारे पुत्र हैं, हमारे साथ में चलना चाहते हो? नंद बाबा रोने लगे, कृष्ण बलदेव भी रोने लगे। बलदेव जी ने कहा पिताजी हमने सुना है और यहाँ के जितने भी हैं कल से कह रहे हैं कि तुम हमारे पुत्र हो, वसुदेव और देवकी, और सारे मथुरा के लोग कह रहे हैं कि तुम इनके पुत्र हो, किंतु ये हमारे पुत्र पिता नहीं, मैं इनका पुत्र नहीं। क्यों? यद्यपि इनके गर्भ से औरस्य में निकला हूं, बात ठीक है, किंतु जो पिता माता जन्मने के साथ ही साथ में बेटे को घर से निकाल करके कहीं दूसरी जगह भेज दे, उसका परवरिश न कर सके, पालन पोषण न कर सके, तो माता पिता कैसे रहा? यदि मैं मर गया होता, पिता ने घर से निकाला कहीं फेंक दिया होता और मैं मर गया होता तो क्या संबंध रहता? तो पिताजी ने और मैया ने हमको तो दोनों ने घर से बाहर कर दिया और मैं मुझको आपने आंख से की पुत्री से भी अधिक तरह से प्यार किया, घर में रखा, अभी तक पालन पोषण किया। जो गर्भधारिणी माता और जन्म देने वाला पिता ही माता पिता नहीं है, कौन पिता है? जो पालन पोषण करता है वो भी पिता है, जो आचार्य है वो भी पिता है, गुरु भी पिता है, स्त्री का पति पिता भी, जिन्होंने अपनी बेटी को कन्या दान दिया वो भी पिता है, ससुर, इस तरह से बहुत से पिता है। इसमें जिन्होंने प्रत्याग किया यद्यपि पिता है, पिता का तो काम किया नहीं, आपने हमारा भरण पोषण पालन पोषण शिक्षा जो कुछ किया है आप किया, इसलिए आपके बिना हम नहीं रह सकते, आप ही हमारे पिता है। विशेष करके कृष्ण को छोड़कर के मैं रह नहीं सकता, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगा, आप कृष्ण को लेकर के चले जाएंगे ब्रज में और हम इनके विरह में तड़पते यहां रहेंगे और वो ब्रज में सखाओं के साथ में खेल कर, ये मेरे लिए असाध्य। यदि ब्रह्मा स्वयं आए और कहें कि तुम यहां पर रह जाओ, जाओ मथुरा में, वसुदेव के पुत्र हो, ठीक है पुत्र हैं, किंतु पालन पोषण तो उन्होंने किया नहीं, इसलिए माता पिता आप ही लोग हैं, आप हैं और यशोदा मैया, मैं आपको छोड़कर के और कृष्ण को छोड़कर के किसी भी हालत में ब्रह्मा जी के कहने पर भी यदि प्रीति भगवान में हो तो ऐसा भजन सभी लोग करते हैं, किंतु निष्ठा के साथ में जब तक भजन नहीं होगा तो वो संबंध के साथ, संबंध किसको कहते हैं? जिस तरह से लड़के की तो बात छोड़िए, लड़का बीमार हो जाता है अपना पुत्र, उसके लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, पत्नी यदि बीमार हो जाए तो उसके लिए भी लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, अपने घर को भी बेच सकते हैं, उधार लेकर के भी चिकित्सा कराएंगे। एक कुत्ता जो अपना है वो भी बीमार पड़ जाएगा तो उसके लिए हम कितना चिंता करके रुपया पैसा खर्च कर सकते, किंतु दूसरे घर का कोई व्यक्ति हो, लड़का हो, दूसरे की स्त्री हो जिससे हमारा संबंध नहीं है, थोड़ी सी सहानुभूति करेंगे, कुछ पैसे खर्च करेंगे, किंतु घर बार बेच करके उधार ले करके लाखों लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कृष्ण से भजन करने के लिए कृष्ण से एक साथ में संबंध होना, कृष्ण मेरे, ये संबंध कैसे आएगा? इच्छा प्रणाली के द्वारा, भूले भटके जीवों को सदगुरु आचार्य इस दीक्षा प्रणाली के द्वारा दिव्य ज्ञान अर्थात कृष्ण के साथ में हमारा संबंध पक्का हो जाता है। जिसका यह संबंध नहीं होता दीक्षा का, वो एकांतिक रूप में भजन नहीं कर सकता। वो तो इसी के फेर में वो घूमता रह जाएगा कि दुर्गा है, काली है, शंकर है, गणेश है, किसका भजन करे, किसका भजन न करे, सभी को एक ही जगह में रख करके भजन करे, उसका कोई स्थिर विचार ही नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णवों की या संतों में ये दीक्षा की प्रणाली है। इस तरह से दीक्षा लेने के बाद में संबंध ज्ञान के साथ में भजन करते करते उसमें कृष्ण में आए कि कृष्ण मेरे हैं, और उस संबंध से भजन करने सहज ही असाधक हो जाता है। ये वसुदेव जी का देवकी का कृष्ण के प्रति ऐसा संबंध क्यों हुआ, क्यों उनके गर्भ में आए, इसी सबको दिखलाने के लिए जिस पद्धति से हम भगवान को पा सकते हैं, हमारा ये जन्म जन्मांतर का ये जो आना आवागमन है ये दूर हो सकेगा, इस पद्धति को दिखलाने के लिए जगत में वास्तविक एक धर्म है, दो धर्म नहीं, वही आत्मधर्म कहलाता है। वो धर्म क्या है, सबके साथ में प्रेम का संबंध, कृष्ण के साथ भी प्रेम का संबंध, ये कृष्ण ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है। इसी के लिए ब्रज में आए, इस प्रेम को दिखलाने के लिए जहां भी जाएंगे प्रेम का तारतम्य से ये सब कुछ लीलाएं उनके हैं, प्रेम के तारतम्य पर निर्भर। इसलिए हम लोग इस परंपरा के साथ में चलेंगे, भजन करेंगे और जीवन में सुखी रहने की चेष्टा करेंगे। किसी प्रकार से जो हम काम कर रहे हैं अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करते हुए अपना जीविका पालन करेंगे, जीविका का निर्वाह करेंगे, और भीतर से यही भाव रहेगा कैसे हम राम भगवान को प्राप्त कर सकें, कैसे आत्मा की अनुभूति हो, परमात्मा की अनुभूति, यही हमारे जीवन का सार है। इसके बाद में अपने जहां जैसा जो जहां स्थिति है वो अपने स्थान पर आता हुआ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, किंतु किस रूप में सुख दुख आएंगे, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार, लाभ करने पर जरूरी नहीं है कि आपको जस मिल ही जाएगा, पूर्व कर्मों का भी संबंध है। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण जैसा है उसमें रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आत्मधर्म के पद पर। संक्षेप में आज हमने यही बदलाया, थोड़ा सा नाम की महिमा बदली है, तो क्योंकि आप लोगों को बैठने में भी कष्ट होता है। और उनसे कुछ वार्तालाप इसी चीज को बतला रहे हैं कि श्रीमद् भागवत प्रेम परम ग्रंथ है, कृष्ण का स्वरूप ही प्रेम का है, कोई भी भक्त प्रेम की हानि नहीं देख सकता, कृष्ण स्वयं भी नहीं देख सकता, कोई भी भक्त प्रेमी भक्त होगा वो प्रेम का को अधिक महत्व देगा। जैसे दो व्यक्ति हैं उसमें जो जिसके प्रति प्रेम में जिसमें अधिक है भक्त लोग उसका महत्व देते हैं, भगवान को भी महत्व देना है, भगवान भी उस प्रेम को महत्व देते हैं। जहां पर वसुदेव जी रो रहे हों, देवी जी रो रही हों, और दूसरी तरफ में ब्रजवासी लोग रो रहे हैं, नंद यशोदा रो रहे हैं, उस समय कृष्ण किसको महत्व देंगे, देना चाहिए किसको, वसुदेव देवकी को या नंद बाबा यशोदा को और ब्रजवासियों को और सबसे अधिक गोपियों को, उनसे प्रतिज्ञा करके कृष्ण आए मथुरा में। और कृष्ण है कैसे, जो कुछ संकल्प करते हैं जरूर पूरा करते हैं, और जब वो तीन तीन बार प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं कि मैं जरूर आऊंगा आऊंगा आऊंगा, और उद्धव के द्वारा भी, बलदेव जी के द्वारा भी उन्होंने बतलाया है जरूर आऊंगा, तो कृष्ण ब्रज में नहीं आते हैं नंद यशोदा और गोपियों को कि यहाँ जो उन्होंने प्रतिज्ञा की उसको पूरी नहीं करते हैं, तो कृष्ण संत संकल्प नहीं हुए और प्रेम को उन्होंने महत्व नहीं दिया, उनकी उपेक्षा की। यदि इस प्रकार का अर्थ लिया जाता है विशेष करके इन तीन चार श्लोकों को, यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि इस प्रकार की व्याख्या यदि की जाए तो प्रेम की हानि होती है। तब तो उन्होंने मथुरा को महत्व दे दिया, वसुदेव देवी को अधिक महत्व दे दिया, ब्रजवासियों को कोई महत्व नहीं दिया, यह सिद्धांत के विपरीत लगता है। इसलिए क्यों नहीं इसका ऐसा अर्थ किया जाए, यह कह करके अपनी टीका में इस प्रकार से अर्थ बतला रहे, किसी को बतला रहे हैं। व्हाट आई टोल्ड, oh, what I told, can you tell in English? At once, from there, from there. Okay. Le lo.
Maharaj was explaining that.
In brief. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जैसा इस श्लोक से स्पष्ट मालूम होता है कि वसुदेव देवकी के अनुरोध से, मथुरा वासियों के अनुरोध से मथुरा में रह गए और नंद बाबा रोते हुए लौट गए, यह स्पष्ट मालूम होता है। यदि इस अर्थ को हम लोग ग्रहण करें तो कोई भी प्रेमी व्यक्ति है, रसिक व्यक्ति है, भावुक व्यक्ति है, इसमें अनर्थ की आशंका करेंगे, इसमें डाउट करेंगे तो ये सारा खेल ही बिगड़ जाएगा प्रेम का। वे लोग कहीं भी प्रेम की थोड़ी सी भी ह्रास हीनता नहीं देखना चाहते, स्वीकार नहीं कर सकते। यहां पर स्पष्ट देखा जा रहा है कृष्ण प्रतिज्ञा करके भी और प्रेम की उपेक्षा कर रहे हैं, उनका रोना देखकर उनकी बात मान ली और रह गए। नंद बाबा जो रिक्त हस्त अपने प्राण प्रिय पुत्रों को छोड़कर के लौट गए, ये प्रेमी भक्तों कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, इसमें प्रेम की हानि देखी जा रही। इनका जो कुछ अर्थ बदलाया गया है उनका कैसे मीमांसा हो, उनका सामंजस्य कैसे करें जो सिद्धांत में गड़बड़ी न हो, प्रेम का उत्कर्ष भी हो जाए, विल हैव टू रिकनसाइल ऑल दिस थिंग दैट ओ प्रेम शुड नॉट बी मिनिमाइज और इस प्रोडक्ट मन वो उसको उपेक्षा न की जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी टीका में इसी चीज को दिखला रहे हैं, क्या प्रेमी लोगों का कामना यह है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और उनके पक्ष में जितने हैं वो सब लोग इस विषय को स्वीकार करते हैं, क्या पितृ जीवाभ्याम ये जो श्लोक आया है, आप जो हमारे माता पिता हैं इसके लिए कहा गया, वसुदेव देवकी के आप ही हम लोगों ने